रजनीश कुमार यादव के आवाज में अब आप छायावादी काव्य में निराला की कविताओं की व्याख्या सुनेंगे। इनकी कविता अपरा में संकलित है। पहली कविता का शीर्षक है तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बधा यौवन नत नयन प्रिय कर्म रत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। सामने तरुमल्लिका अट्टालिका प्रकार। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन दीवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लू रुई ज्यों जलती हुई भू। गर्द चिनगी छा गई प्रायः हुई दोपहर। वह तोड़ती पत्थर देखते देखा मुझे तो एक बार। उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर ढुलक माथे से गिरे शिखर। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। इस कविता की रचना सन 1935 ईस्वी में हुई थी। निराला की यह कविता केवल निराला साहित्य में ही नहीं वरन हिंदी साहित्य की प्रगतिवादी में विशेष महत्वपूर्ण है। इस कविता में इलाहाबाद के पथ पर तोड़ती पत्थर वाली का चित्र उतना ही उदात्त है जितना परिमल की विधवा। लेकिन वहाँ यह व्यंग्य और तीव्रतर संधता नहीं है जो तोड़ती पत्थर में व्यक्त हुई है। वहीं प्रगतिवादी धारा का केंद्र बनी है। पूंजीवादी सभ्यता का चित्र जो है वह तत्कालीन साहित्य में अकेला है। साहित्य में मार्क्सवादी भौतिकवाद का अभी नाम सुना जा रहा था। श्रमिक और सर्वहारा अभी आकर्षण के विषय ही थे। निराला ने काव्य में श्रमिकों का यह आख्यान दिया पूंजीपतियों पर हथौड़े का प्रहार हुआ। एक मजदूरनी की अवस्था का वर्णन करते हुए निराला जी कहते हैं कि वह पत्थर तोड़ रही थी और उसे पत्थर तोड़ते हुए इलाहाबाद के पथ पर देखा। वहाँ वह पर कोई भी छायादार पेड़ नहीं था जिसके नीचे बैठकर वह अपनी गर्मी दूर कर लेती। उसका कृष्ण रंग था। वह यौवन पूर्ण और संगठित था। आंखें झुकी हुई थी और उसका मन प्रिय को प्रसन्न करने वाले कार्यों में लगा हुआ था। उसके हाथ में भारी हथौड़ा है जिससे वह बार बार चोट लगाती थी। उसके सामने वृक्षों के समूह अट्टालिकाएं और ऊंचे ऊंचे महल थे। पूंजीवादी की वैभवशालीनता का संकेत मिलता है जिसे उस मजदूरनी की दीन अवस्था और अधिक निखर आती है। धूप पड़ रही थी गर्मी के दिन थे सूर्य अपने जलते रूप में प्रकट हो रहा था। झुलसती हुई लू चल रही थी उसे पत्थर तोड़ते लगभग दोपहर हो गई थी। मैं इसकी ओर देख रहा था इसको उसने देख लिया। एक प्रकार उसने मुझे देखा एक बार उस भवन की ओर एक बार छिन्न तार हुए अपने वस्त्रों की ओर देखा। यह देख कर कि कोई और वहाँ नहीं है मुझे उसने इस प्रकार की कातर दृष्टि से देखा जैसे कोई मार खाने पर रोए न। उस समय उसकी दृष्टि में जो कातरता होती है वैसे ही कातरता उसकी दृष्टि में थी। मैंने सजे हुए सितार पर भी वैसी मर्मांतक झंकार कभी नहीं सुनी जैसा झंकार उसकी कातर दृष्टि मुझे सुन गई। एक क्षण के बाद अपने कार्य में कुशल वह मजदूरनी कांप उठी। उसके माथे से पसीनों की बूंदे ढुलक कर नीचे गिर गई। मानो उन पसीनों के माध्यम से उसने अपने काम में लीन होते हुए ये शब्द कह दिए थे कि मैं पत्थर तोड़ रही हूँ। निराला के दूसरे कविता का शीर्षक है वन बेला। वर्ष का प्रथम पृथ्वी के उठे उरुज मंजु पर्वत निरुपम किसलयों बधे। पिंक भ्रमर गुंज भर मुखर प्राण रच रहे सधे। प्रणय के गान सुनकर रहसा प्रखर से प्रखरतर हुआ तपन यौवन सहसा। ऊर्जित भास्वर पुलकित सत सत व्याकुल कर भर चुमता रसा को बार बार चुंबित दिनकर। क्षोभ से, लोभ से, ममता से, उत्कंठा से, प्रणय के नयन की समता से, सर्वस्व दान देकर लेकर सर्वस्व प्रिया का सुकृत मान, दाब में ग्रीष्म भीष्म से भीष्म बढ़ रहा ताप, प्रश्वेद कंप ज्यों ज्यों युग उर पर और चाप, और सुख झंप निश्वास सघन पृथ्वी की बहती लू, निर्जीवन जड़ चेतन यह सांध्य समय प्रलय का दृश्य, भरता अंबर पीताभ अग्निमय ज्यों दुर्जय निर्धूम निरभ्र दिगंत प्रसर, कर भस्मीभूत समस्त विश्व को एक शेष, उड़ रही धूल नीचे अदृश्य हो रहा देश, मैं मंद गमन धर्माक्त विरक्त पार्श्व दर्शन से खींच नयन, चल रहा नदी तट को करता मन में विचार, हो गया व्यर्थ जीवन मैं रण में गया हार, सोचा न कभी अपने भविष्य की रचना पर जल चल रहे सभी, इस तरह बहुत कुछ आया निज इच्छित स्थल पर, बैठा एकांत देखकर मर्माहत स्वर भर, फिर लगा सोचने यथा सूत्र मैं भी होता यदि राजपुत्र, मैं क्यों न सदा कलंक ढोता, ये होते जितने विद्याधर मेरे अनुचर, मेरे प्रसाद के लिए बिनत शीर उद्यत कर, मैं देता कुछ रख अधिक किंतु जितने पेपर, सम्मिलित कंठ से गाते मेरी कीर्ति अमर, जीवन चरित्र लिख अग्रलेख अथवा छापते विशाल चित्र, इतना भी नहीं लक्ष्यपति का भी यदि कुमार होता मैं, शिक्षा पाता अरब समुद्र पार, देश की नीति के मेरे पिता परम पंडित, एकाधिकार रखते भी धन पर अविचल हित चित, होते उग्रतर साम्यवादी करते प्रचार, चुनती जनता राष्ट्रपति उन्हें ही सुनिर्धार, पैसे में 10 राष्ट्रगीत रचकर उन पर कुछ लोग बेचते गागा गर्धभ मर्दन स्वर, हिंदी सम्मेलन भी न कभी पीछे को पग रखता कि अटल साहित्य कहीं यह हो डगमग, मैं पाता खबर तार से त्वरित समुद्र पार, लार्ड के लाडलों को देता दावत बिहार, इस तरह खर्च केवल सहस्त्र खटमास मास, पूरा कर आता लौट योग निज पिता पास, वायुयान से भारत पर रखता चरण कमल, पत्रों के प्रतिनिधि दल में मच जाती हलचल, दौड़ते सभी कैमरा हाथ कहते सत्वर निज अभिप्राय, मैं सभ्य मान जाता झुककर होता फिर खड़ा इधर को मुख कर, कभी उधर बीसियों भाव की दृष्टि सतत नीचे ऊपर, फिर देता दृढ़ संदेश देश को मर्मांतिक भाषा के बिना न रहती अन्य गंध प्रांतिक, जितने रूस के भाव मैं कह जाता अस्थिर समझते विचक्षण ही जब वे छपते फिर पिता संग, जनता की सेवा का व्रत मैं लेता अभंग करता प्रचार, मंच पर खड़ा हो साम्यवाद इतना उदार, तप मस्तक हो गया सांध्य नभ का रक्ताभ, दिगंत फलक खोली आंखें आतुरता से देखा आमंद, प्रियसी के अलग से आती जो स्निग्ध गंध, आया हूँ मैं तो यहाँ अकेला रहा बैठ, सोचा सत्वर देखा फिर कर घिर कर हंसती उपमन बेला, जीवन में भर यह ताप त्रास मस्तक पर लेकर उठी अतल की अतुल सांस, ज्यों सिद्धि परम भेद कर कर्म जीवन के दुस्तर क्लेश, सुषम आई ऊपर जैसे पार कर क्षीर सागर, अप्सरा सुघर सिक्त तन केस सतलहरों पर, कांपती विश्व के चकित दृश्य के दर्शन सर, बोला मैं बेला नहीं ध्यान लोगों का जहां खिली हो बनकर वन्य गान, जब ताप प्रखर लघु प्याले में अतल की सुशीलता ज्यों भर तुम करा रही हो यह सुगंध की सुरापान। लाज से नम्र हो उठा चला मैं और पास। सहसा वह चली शांत बेला के सुबातास, झुक झुक तन तन फिर झूम झूम हंस हंस झकोर। चिर परचित चितमन डाल सहज मुखड़ा मरोर, भर मुहुर मुहुर तन गंध विमल बोली बेला। मैं देती हूँ सर्वस्व छुओ मत अवहेला, कि अपनी स्थिति की जो तुमने अपवित्र स्पर्श हो गया तुम्हारा। रुको दूर से करो दर्श, मैं रुका वहीं वह शिखा नवल। आलोक स्निग्ध भर दिखा गई पथ जो उज्ज्वल, मैंने स्तुति की हे वन वहिनी के तन्वी नवल। कविता में कहाँ खुले ऐसे दल दुग्ध धवल, यह अपल स्नेह विश्व के प्रणयी प्रणयिनियों का हार ओर गेह। गति सहज मंद यह कहाँ कहाँ वा मालक चुंबित पुलक गंध। केवल आपा खोया खेला इस जीवन में, कह सिहरी तन में वन बेला। कू कू बोली कोयल अंतिम सुखस्वर, पी कहाँ पपिया प्रिया मधुर बिस गई छहर। उर्बढ़ा आयु पल्लव पल्लव को हिला, हरित बह गई वायु लहरों में कंप और लेकर उत्सुकता। सरिता तैरी देखती तमश्चरिता, छवि बेला की नभ की ताराएं निरुपमिता। सतनयन दृष्टि विस्मय में भर कर रही विविध आलोक सृष्टि, भाव में हरा मैं देख मंद हंस दी बेला। बोली अस्फुट स्वर से यह जीवन का मेला, चमकता सुघर बाहरी वस्तुओं को लेकर। त्यों त्यों आत्मा की निधि पावन बनती पत्थर, बिकती जो कौड़ी मोल यहाँ होगी कोई इस निर्जन में। खोजो यदि हो समतोल वहाँ कोई विश्व के नगर धन में, है वहाँ मान इसलिए बड़ा है एक शेष छोटे अजान। पर ज्ञान जहाँ देखना बड़े छोटे असमान समान, वहाँ सब सुहृद वर्ग उनकी आँखों की आभा से दिग्देश स्वर्ग। बोला मैं यही सत्य सुंदर, नाचती वृंत पर तुम ऊपर होती जब उपल प्रहार प्रखर। अपनी कविता तुम रहो एक मेरे उर में, अपनी छवि में सुचि संचरिता। फिर उसह काल मैं गया टहलता हुआ, बेल की झुका डाल तोड़ता फूल कोई ब्राह्मण। जाती हूँ मैं बोली बेला जीवन प्रिय के चरणों पर करने को अर्पण। देखती रही निःस्वन प्रभात की वायु बही। वन बेला कविता की रचना सन 1927 ईस्वी में हुई थी। इस कविता का परिचय श्री वर्मा के इन शब्दों में दिया है। वन बेला का व्यंग्य मध्यम वर्गीय बुद्धिवादी नारेबाजी पर है। यह व्यंग्य उन राजपूतों पर है जो अपनी राजपुत्रता से विद्या खरीदते हैं, उन लक्षपतियों पर है जो भारत के विषय में शून्य ज्ञान रहकर भी राजनीति और साहित्य में अपना अधिकार दंभ बताते हैं, उस पत्रकारिता पर है जो पूंजी पर आश्रित है, उन साम्यवादी नेताओं पर है जो रूस को पिता गुरु मानकर भारत की अवहेलना कर जाते हैं। कविता की पूरी अनुविति बेला का कथन चरम सीमा इस जीवन के मेले की वाह चमक के प्रति तिरस्कार दर्शाती है। वन में कौड़ी के मोल बिकने वाली बेला की समता भी विश्व की कोई वस्तु नहीं कर सकती। और अपनी कविता के प्रति विश्वास के साथ कवि अपनी साहित्यिक विजय को अनुभव करता है। मन के उतार चढ़ाव के अनुरूप ही कविता की व्यक्त शैली में भिन्नता आ गई है। कवि मन में विचार अनेक के पूर्वोत्तर उनकी परिमल कालीन कला का रूप है। जहाँ पृथ्वी और सूर्य का प्रणय चलता है, मध्य में शैली यथार्थवादी तीक्ष्ण चोट करने वाली और व्यंग्य प्रधान है जो आक्रोश को व्यक्त करती है। अंत में एक प्रशांत मनोदशा को व्यक्त करने वाली गंभीर और दार्शनिक कवि की सी यह उनके विजय के गर्व की अनुभूति भी करती है। कविता की व्याख्या इस प्रकार से है। वर्ष का प्रथम चरण था, पृथ्वी के उरोज उठे हुए थे, अर्थात पृथ्वी पर सर्वत्र हरियाली फैली हुई थी और समुद्र और सुंदर तथा अद्वितीय पर्वत शोभा पा रहे थे, अथवा मंजुल और अद्वितीय पर्वत पृथ्वी के उरोजों के समान उठे हुए थे। नवीन पत्तों से बंधे हुए कोयल और भंवरे गूंज रहे थे, जो अपने जीवन की प्राणवत्ता के प्रेम के गीत रच रहे थे, जिसे सुनकर तपन का यौवन अचानक प्रखर से प्रखरतर हो रहा था और शक्तिशाली तथा चमकता हुआ सूर्य पुलकित होकर अपने सैकड़ों व्याकुल किरण रूपी हाथों से गोद में भरकर गुस्से से उत्कंठा से प्रेम के नयन की समता से पृथ्वी को चूम रहा था, जो अपना सर्वस्व दान देकर प्रिया के भाग्यशाली मान को पूर्ण रूप से ले रहा था। गर्मी की अधिकता के कारण भयंकर से भयंकर ताप बढ़ रहा था, जिसके कारण शरीर में पसीने और कंपकपी आती थी। ज्यों ज्यों आकाश और पृथ्वी दोनों के हृदय पर लू चलती थी, त्यों त्यों पृथ्वी पर गर्मी की अधिकता के कारण दुख और पृथ्वी के गहरे विश्वास रूपी गर्मी के झोंके बढ़ रहे थे, जो जड़ और चेतन सृष्टि को निर्जीव सा बना रहे थे। यह संध्या का समय था, आकाश का पीलापन और अग्नि के समान लाल रंग प्रलय का दृश्य उपस्थित कर रहा था, जो किसी अजेय व्यक्ति की भांति धूम रहित और बादल रहित बनकर सारी दिशाओं में फैला हुआ था तथा सारे विश्व को जलाकर अकेला बचा हुआ था। उड़ती हुई धूल में सारा देश छिप रहा था। मैं मंद गति से चलता हुआ धर्मयुक्त होकर तथा विरक्त भाव से पास दृश्य से आंखें हटाकर अपने मन में यह विचार करता हुआ नदी तट पर चल रहा था कि मेरा जीवन व्यर्थ हो गया और मैं जीवन के रण में हार गया। मैंने यह कभी नहीं सोचा कि मेरे भविष्य की रचना पर ही सब लोग चल रहे हैं। इसी प्रकार बहुत कुछ बातें मन में आई और मैं अपने इच्छित स्थान पर पहुंचकर एकांत देखकर तथा दुखपूर्ण स्वर भरकर बैठ गया। पहले विचारों के प्रसंग में सोचने लगा कि यदि मैं भी राजपुत्र होता तो भले ही मैं सदा बुरे कार्य करता रहता, तो भी वह जितने विद्वान हैं मेरे नौकर होते और मेरी प्रसन्नता के लिए वे अपना सिर विनम्रता से झुकाए रखते और उद्दत हाथों से मैं जो कुछ देता उसे उससे अधिक लिखते। जितने भी पेपर होते थे वे सब मिलकर मेरी अमर कीर्ति का गुणगान करते, मेरा जीवन चरित्र लिखकर उस पर अग्रलेख लिखते अथवा मेरा विशाल चित्र छापते। यदि मैं राजपुत्र न होता तो किसी लाखपति का पुत्र ही होता। मैं नव शिक्षा पाने के लिए विदेश जाता। मेरे पिता देश की नीति के पूर्ण पंडित माने जाते और वे धर्म पर एकाधिकार रखते हुए भी अग्रसर साम्यवादी होते तथा साम्यवाद का प्रचार करते। तब उन्हें अच्छी तरह से सोच विचार कर जनता राष्ट्रपति चुनती और कुछ लोग उन पर भद्दे राष्ट्रीय गीत रचकर अपने गधे से भी अधिक कर्कश स्वर में गा गा कर बेचते। हिंदी सम्मेलन भी इस दिशा में पीछे न रहता और उन गीतों को अमर साहित्य के रूप में इस डर से कि कहीं वे खो न जाएं संभाल कर रखता। मैं शीघ्र ही समुद्र पार तार के द्वारा यह खबर पाता और लॉर्ड के पुत्रों को दावत देता और उनके साथ विहार करता। इस तरह प्रत्येक मास केवल 6,000 रुपये खर्च करके और अपनी पढ़ाई समाप्त करके योग्य पिता के पास लौट आता। मैं वायुयान से भारत पर अपने चरण कमल रखता हुआ घूमता। जहाँ भी मैं जाता पत्रों के प्रतिनिधियों में हलचल मच जाती। सभी कैमरा लेकर दौड़ते और जल्दी से अपना अभिप्राय कहते, अर्थात फोटो खींचने की प्रार्थना करते। मैं सभ्यता के नाते झुक कर उनको बात उनकी बात मान लेता और फिर कभी इधर को और फिर कभी उधर को मुंह करके खड़ा होता तथा लगातार नीचे ऊपर देखकर विषयों भाव मुद्राएं बनाता। तदुपरांत मैं देश को भावपूर्ण और गुण संदेश देता जिसमें भाषा को छोड़कर और कोई भी प्रतीक भाव संभव नहीं होता। मैं स्थिर होकर रूप के साम्यवादी विषयक सभी सिद्धांतों को कह जाता जो बार बार अखबारों में छपते और जिन्हें विद्वान लोग ही समझ पाते। तब मैं पूर्ण रूप से अपने पिता के साथ जनता की सेवा का व्रत लेता और अत्यधिक उदार बनकर तथा मंच पर खड़ा होकर साम्यवाद का प्रचार करता। सांध्यकालीन नव का मस्तक तप तप कर लाल हो गया जिससे दिशा भी लाल हो गई। मैंने आतुरता से अपनी आंखें खोली और देखा कि चारों ओर से प्रेसी के अलग से आती हुई स्निग्ध सुगंधित की भांति तेज सुगंधी आ रही थी। मैंने तुरंत सोचा कि मैं भी यहाँ अकेला आया हूँ, इसलिए वहीं पर बैठ गया और मैंने अपने चारों ओर हंसती हुई उपवन बेला को देखा जो दिन भर के ताप और दुखों को अपने जीवन में भरकर और अतल की अतुल सांस लेकर इसी प्रकार लहरा रही थी जिस प्रकार किसी परम सिद्ध व्यक्ति की साधना धर्म जीवन के कठिन दुखों भेद कर और समता लेकर ऊपर आ गई, अथवा जैसे कोई सुंदर अप्सरा क्षीर सागर को पार करके निकली हो जिसका शरीर और केश भीगे हुए हों तथा जो विश्व के चकित दृश्य के दर्शन सरों से आहत होकर कांप रही हो। वन की बेला को देखकर मैंने कहा, हे बेला, जिस वन में तुम गीत बनकर लिखी हुई हो वहां पर लोगों का आवागमन नहीं है। जब भीषण गर्मी पड़ती है तो तुम अपने छोटे प्याले में अथाह सुशीलता भरकर यह सुगंधि की सुरा का पान करा रही हो। मैं शर्म से नम्र हो गया हूँ तथा और भी अधिक उसके समीप चला गया। अचानक संध्या समय की सुगंधि वायु चलने लगी, तब झुक झुक कर तन तन कर फिर झुम झुम कर और वायु हंस हंस कर झकोरा खाती हुई चिरपरिचित चितवन को मेरे चेहरे पर डालती हुई अपना सुख मुख मड़ोरती हुई और बार बार अपने शरीर में विमल सुगंधि को भरती हुई बोली कि मैं अपना सर्वस्व देती हूँ, इसलिए तुम मुझे मत छुओ क्योंकि तुमने अपनी स्थिति की लापरवाही की है, इसलिए तुम्हारा स्पर्श अपवित्र हो गया। अतः तुम रुको और दूर ही से मुझे देखो। बेला की बात को सुनकर मैं उसी उज्ज्वल पथ पर रुक गया जो नवीन शिक्षा के प्रकाश की स्निग्धता से दिखलाई गई थी। मैंने प्रार्थना की, हे वन की अग्नि की नवीन कुमलांगी, जिस प्रकार तुम्हारी उज्ज्वल पंखुड़ियाँ हैं ऐसी विचार पंखुड़ियाँ तो जो दूध के समान उज्ज्वल हो कविता में भी नहीं मिलती और न इस प्रकार असहल स्नेह जो विश्व के प्रेमी प्रेमिकाओं के प्रति हैं नहीं मिलता। तुम्हारे हृदय पर हार है, तुम्हारी गति सहज और मंद है और तुम में वामा की अलकों से चुमी हुई पुलक गंध है जो काव्य में नहीं मिलती। इस प्रश्न को सुनकर बेला ने कहा कि तुमने केवल आपा खोया है और इस जीवन में खेल खेला है, यह कहकर वह सिहर गई। अपने अंतिम सुख स्वर में कोयल कूकने लगी और पपीहा प्रिय का विरह दग्ध स्वर में बिखेरने लगा हृदय में विविध भावों को पैदा करके और हरे पत्ते को हिलाती हुई वायु चलने लगी। लहरों में कंप और उत्सुकता लेकर नदी तैरने लगी तथा रात में विचरण करने वाली आकाश की अद्वितीय ताराएं बेला की शोभा देखने लगी। इस विविध अलौकिक सृष्टि को देखकर सैकड़ों आँखों की दृष्टि विस्मय से परिपूर्ण हो गई। बेला के अलौकिक सौंदर्य को देखकर मैं भाव विभोर हो गया। तब वह हंसती हुई मुझसे अस्पष्ट स्वर में कहने लगी कि ये जीवन बाहरी वस्तुओं को लेकर जितना चमकता है, उतनी ही आत्मा की पवित्र निधि पत्थर बनती जाती है जो कौड़ी के मोल बिकती है। इस निर्जन वन में चाहे जितना खोजो, इस प्रकार की आत्मा नहीं मिल सकती और नज़रों में संभव रखने वाले व्यक्ति नहीं रहते। नगरों में मान अपमान का प्रश्न है, इसलिए वहाँ पर एक बड़ा है, शेष छोटे तथा मूर्ख हैं। किंतु जहाँ पर ज्ञान होता है, वहाँ पर बड़े भी छोटे होते हैं और असमान भी समान होते हैं। वहाँ पर सब मित्र मंडली होती है, जिनकी आँखों की ज्योति से दिशा और देश स्वर्ग बन जाते हैं। यह सुनकर मैंने कहा कि तुम्हारा कथन सत्य और सुंदर है। तुम तब भी अपनी डाली पर प्रसन्नता से नाचती रहती हो जब तुम्हारे ऊपर ओले का तीक्ष्ण व्याघात होता है। अतः केवल तुम अपनी शुद्ध शोभा को संचरित करती हुई मेरे हृदय में और मेरी कविता में बसी रहो। फिर प्रभात में मैं टहलता हुआ गया और देखा कि बेला की डाल को झुकाकर कोई ब्राह्मण फूल तोड़ रहा था। बेला ने कहा कि मैं प्रिय के चरणों पर अपने जीवन को अर्पण करने जा रही हूँ। उसकी इस अवस्था को प्रभात की वायु चुपचाप देखती रही।